بکٹیوں کے بھی دو تین شاخیں ہیں، تو سرفراز بکٹی کل پر ہیں، یہ کل پر وہ لوگ ہیں جن کا جھگڑا تھا نواب بکٹی اور ان کے خاندان کے ساتھ، اور وہ پھر اس جھگڑے کے نتیجے میں کل پر جتنا قبیلہ تھا ان کو جنوبی پنجاب بھیج دیا گیا تھا، بہت سارے لوگ ابھی تک جنوبی پنجاب میں رہ رہے ہیں، پھر کچھ لوگ ہیں جب نواب اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی 2 اگست 2006 میں، تو اس کے بعد ان کو واپس اپنے گھروں کو جانے کا موقع ملا، تو ان کا تعلق اس قبیلے سے ہے۔ لیکن وہ جو بات آپ کر رہی تھی بزنس مین کی، میں کراچی میں گزشتہ روز اپنے ایک بڑے بزنس مین ہی کہہ لیں ان سے بات کر رہا تھا، تو وہ بھی بہت نالا تھے موجودہ صورتحال سے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت غیر یقینی صورتحال بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی مقامی لوگ بھی اس وقت سرمایہ کاری کرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ انہوں نے چند اپنے منصوبوں کا ذکر کیا، چھوٹے چھوٹے منصوبے ہیں، اور یہ کہا کہ اس کا دار و مدار جو فائنینسرز ہیں ان پہ ہے، کچھ فیکٹریوں والے ہیں، سامان خریدنا چاہتے ہیں، نئے پلانٹس لگوانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے سارا کچھ اس وقت معطل کر دیا ہے، دے ہیو پٹ اٹ آن ہولڈ، کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ حکومت کب تک چلے گی، اور آیا پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، مالی صورتحال، وہ جو ڈیفالٹ سے ہم بچ سکیں گے یا نہیں، ایک بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم نے قرضہ ریسٹرکچر نہیں کرنا، بلکہ ہم نے رول اوور چاہتے ہیں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سے، جبکہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ شاید آپ کو ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس کا مطلب ہوگا ریسٹرکچرنگ، اور ریسٹرکچرنگ آف ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ وہ جو گم و گم کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے خاص طور پہ چھوٹے اور میڈیم درجے کے بزنس مین ہیں، انہوں نے سارا کام ان کا ٹھپ ہوا ہوا ہے، جس کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ گزشتہ 2 مہینے میں ایف بی آر کا جو ریونیو یا ٹیکس کلیکشن ہے اس میں 20-25% کمی رہی ہے، جو ٹارگیٹ تھا اس سے کم از کم 20% کم ٹیکس وصول ہوا ہے، تو پروجیکشن یہ ہے کہ اگر ایسے ہی رہا تو آئندہ 8-9 مہینے میں تو پاکستان کو 450-450 ارب روپے کا شارٹ فال ہو جائے گا ٹیکس ریونیو میں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ عدم استحکام ہیں، اور بلکہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا مولانا فضل الرحمان نے اپنی قومی اسمبلی کی تقریر میں، کہا کہ آپ تمام معاملات کو خود نہ سمیٹیں، اس کا مطلب ہے کہ تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور جو سیاسی معاملات ہیں، ملک کو چلانے کے معاملات ہیں، وہ آپ سیاستدانوں پہ پارلیمان پہ چھوڑ دیں۔ تو ایک لحاظ سے ایک انہوں نے وارننگ دی مقتدر حلقوں کو بھی، اگرچہ وہ مقتدر حلقوں کے بہت قریب رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کی تقریر سے بھی تھوڑی سی فرسٹریشن جھلک رہی تھی کہ کیوں اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاستدانوں کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی تحقیر کی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر وہی ہو سکتا ہے جو انہوں نے کہا سردار اختر مینگل نے کیا، کہ لوگ پھر اس ایوان کو چھوڑ دیں گے، جس ایوان کے اکثر لوگ کا کام یہ ہے کہ جب انہیں اشارہ ہوتا ہے تو وہ پھر قانون سازی کر لیتے ہیں، مطلوبہ
قانون سازی کر لیتے ہیں۔ سر میں جا کہیں اور رہی تھی مگر مطلوبہ قانون سازی پہ مجھے خیال آیا، یہ سر لوگوں کا تو اعتبار بالکل ختم ہو جائے گا، مولانا صاحب بھی پی ٹی آئی سے بھی رابطے میں ہیں، گورنمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں، آئی نو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، پاکستان میں جوڈیشری کے بارے میں کسی کو بھی تشویش نہیں ہے، یہ سندھ ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق جامعہ کراچی کی جو تھی اس کو انہوں نے معطل کر دیا، فیصلے کو معطل کر دیا۔ اب آپ امیجن کیجئے گا کہ جو جس کو وہ مجرم قرار دے رہے ہیں کہ اس کی ڈگری جعلی ہے، اس کو گواہی کا موقع نہیں دیا گیا، ایک اہم شخصیت کو غائب کر دیا گیا اور وہ اس ٹیم میں بیٹھ نہیں سکے، واٹ از دی میسج؟ ڈو دے تھنک کہ قوم انتہائی بیوقوف اور احمقوں کی قوم ہے؟
دیکھیے عارفہ بہن، میں تو ایک سوال یہ بھی اٹھا رہا ہوں آپ پہلی مرتبہ اب آپ کے پروگرام میں، کہ پروفیسر ریاض کو اغوا کیا گیا یا ڈیٹین کیا گیا 8-9 گھنٹوں کے لیے، सिंडिकेट की मीटिंग में उनको शिरकत से रोकना मकसद था और रात को उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में जो सिंडिकेट यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के मेंबर्स थे उन्होंने फैसला कर दिया कि जी जस्टिस तारिक जहांगीरी की लॉ एलएलबी की डिग्री जाली है। अब इमेजिन कीजिए कि एक सिंडिकेट मेंबर नहीं था, जो मतलूबा जो टारगेट थे जस्टिस साहब वो खुद भी मौजूद नहीं थे। मैं हैरान हूं उन लोगों की इंटेग्रिटी पे जो सिंडिकेट के बाकी अरकान थे, और ये मैं आप नुक्ता भी उठा रहा हूं कि उनकी इंटेग्रिटी, उनकी रूल ऑफ लॉ के साथ कमिटमेंट, उसूल पसंदी कहां चली गई कि जब उन्होंने तमाम जवाबित को बलाए तक रखते हुए एक रुकन की अदम मौजूदगी में और जो मतलूबा साहब थे जस्टिस साहब उनकी अदम मौजूदगी में एक फैसला कर दिया। तो मैसेज ये था कि जो लोग हमारे खिलाफ जाएंगे या ऐसे फैसले करेंगे जो हमारे खिलाफ जाते हैं या उन लोगों के साथ देते नजर आएंगे जो जिनके साथ हमारा झगड़ा है, उन्हें हम किसी भी सूरत माफ नहीं करेंगे। और देखिए कितनी भोंडी एक कोशिश है। अब सिंध हाईकोर्ट ने बिल्कुल बजा तौर पे वो सिंडिकेट का फैसला फिर मुअत्तल किया है, लेकिन जो पाकिस्तान की जुडिशरी आपको मालूम है 139 मुल्कों में इसका कोई 131वां नंबर है, वो क्यों है? वो इसी किस्म के फैसलों की वजह से है कि आप जरूरत के वक्त नजरिया जरूरत के तहत ऐसे फैसले करते हैं जिसकी शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने 26 मार्च को की थी अपने खत में कि हम पे दबाव है, जबरदस्ती फैसले कराने की कोशिश है। और उसके बायस इसमें एक बात बड़ी समझने की है, यू नो हम पाकिस्तान ही हैं, पाकिस्तान के लिए हमारा दिल दुखता है, पाकिस्तान के बारे में जब कोई मनफी बात करता है बाहर हम जब ट्रेवल करते हैं हमारा खून खौल उठता है। लेकिन इस किस्म के जब फैसले होंगे तो लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे तो क्या होगा? इसके अलावा क्या करेंगे वो? और हमारे पास उसका क्या जवाब है? जो कुछ मैं देख रहा था कि ऐसे इमरान खान के खिलाफ आज लाहौर हाई कोर्ट को एक लिस्ट मिली कि सिर्फ पंजाब में उनके खिलाफ 48 मुकदमे बने हुए हैं, 48 मुकदमे इमरान एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में और वो भी दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस होने में। यानी एक ही दिन में 9 मई को जबकि वो कस्टडी में थे मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात में शिरकत की, पथराव किया, जलाओ घेराव किया। तो अब जब बाहर बैठा हुआ हमारे पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे हैं या गैर मुल्की जो पाकिस्तान पे नजर रखते हैं वो जब ये देखेंगे कि अच्छा एक शख्स के खिलाफ एक दिन के हवाले से 6 मुख्तलिफ शहरों में 48 मुकदमे हैं, क्या वो हमारी तारीफ करेगा? क्या हम उसके सामने फिर सर उठा के बात कर सकेंगे कि जी हम एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क हैं, एक जमहूरियत है, वो जमहूरियत जिसका जिक्र मौलाना फजल रहमान ने अपनी तकरीर में किया।
सर मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस बात की कि कराची यूनिवर्सिटी, इसका मकसद ये हुआ कि हमारे असातिज़ा और कराची यूनिवर्सिटी जैसे असातिज़ा जो हैं प्रोफेसर्स और डीन्स वगैरह, क्या उनका इखलाकी मायार भी इतना गिर गया है कि हम कह सकते हैं कि मनी टॉक्स और सम प्रेशर मेक देम गिव एनी डिसीजन व्हाट समबडी वांट्स?
ऐसे ही हुआ है ना। मैं तो यही तो मैंने सवाल उठाया कि जो सिंडिकेट के मेंबर्स थे जिन्होंने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री को, एलएलबी की डिग्री को मुतनाज़े करार दिया, मनसूख कर दी, उनका ईमान, उनकी इंटेग्रिटी, उनके इखलाकियात और उनकी कवानीन और जवाबित के साथ वापसगी कमिटमेंट वो कहां थी जब उन्होंने ये फैसला होने दिया? होना तो ये चाहिए था कि गालिब अक्सरियत को तो बायकॉट कर देना चाहिए था उस मीटिंग का।
सही सही सर, मेरा
एक शख्स ने, मेरा ख्याल है पहले उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा कि प्रोफेसर रियाज जो है इस बात के मुखालिफ हैं, इस एजेंडे से मुत्तफिक नहीं है, लिहाजा वो खबर बाहर गई और उनको गायब करवा दिया गया। तो ये तो खराज तहसीन पेश करें सिंडिकेट के उन मेंबर्स को जिन्होंने वो डिग्री मंसूख की जस्टिस तारिक जहांगीरी की।
बहुत शुक्रिया सर। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वजाहतें पेश करते कर रहे हैं कि भाई जो भी गलत हुआ उसको कानून के टहरे में लाया जाएगा, मगर अगर मैं पाकिस्तान का 70-77 साल का पिछला रिकॉर्ड देखती हूं तो बहुत सारी गलतियां जिन लोगों से हुई वो नहीं तो वो तो मर गए, उनके बच्चे भी आज ऐश कर रहे हैं उसी पैसे पे जिसके लिए उन्होंने वो गलत फैसले किए थे। तो ये अब क्या है, इमरान खान साहब की रिजर्वेशन भी ये है कि मुझे घसीटा जाएगा उस सिम्त में। आपने भी अभी जिक्र किया कि एक शख्स जो जेल के पीछे था उसके पे 26 केसेस भी बनाए गए, तो ये मतलब रोज DGISPR अब आके अपनी वजाहतें पेश करते फिरते हैं। और फिर वो ये भी वो कहते हैं बहुत वो एक है कि जब इंसान ज्यादा वजाहतें देना शुरू कर देता है ना तो उसमें कुछ न कुछ काला हुआ करता जरूर है कि हमारा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है। तो वाजे तौर पे पार्टी के साथ ताल्लुक तो उनको नजर आ रहा है कि एनीबडी जो आसानी से बिक जाता है वही पार्टी उनकी।
देखिए ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो नफी करती है उन तमाम दावों की जो DGISPR वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। यदि मुझे बताइए कि क्या किसी सिविलियन इदारे के एहलकारों की जरूरत है कि एक साबिक वजीर आजम को रात के अंधेरे में उठा लें, क्या उनको पुलिस एहलकारों की इतनी जरूरत है कि वो घरों के चारदीवारी का तकद्दस उसका बर्बाद करके दीवारें फलांग के अंदर से लोगों को उठा के ले आए, या फिर जिस तरह तोशाखाना केस में इमरान खान को सजा सुनाई गई कुछ और केसों में जिस तरह, तो जो कुछ ऑन ग्राउंड हुआ जिस अंदाज में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बिल आखिर बोल पड़े तो वो तो सारी उन चीजों की नफी करता है। बड़ी अच्छी बात है कि इदारा अपनी वजाहत करे अपना मौकिफ पेश करे, लेकिन अब क्या करें कि मैं तो जब हाल ही में टोरंटो में था मैं टैक्सी दो दफा टैक्सी में गया दो या तीन दफा तो ला महाला या अफगान होते हैं या कोई पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है जो टैक्सी ड्राइवर है। अभी मैं जब फ्लाइट पे वापस आ रहा था जाते हुए यही हाल था, आते हुए भी कि लोग मुझे मिले एयरलाइन के ही थे कि उनमें से एक बंदा मौजूदा सूरत हाल के हक में नहीं बोल रहा था। कुछ तफसीली और भी बातें थी, ज्यादा बात मैं ये नहीं करता, लेकिन मालूम नहीं कि DGISPR और फिर उनके बॉसेज और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें खबरें कौन पहुंचाता है जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो
उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है।
मुझे तो यही लगता है कि उनको जो असल सूरत हाल है वो बताई नहीं जाती, जिसकी वजह से वो मीडिया के सामने जब आते हैं तो ऐसी बात करते हैं जिसपे हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाज हमारे सहाफी थे वो जेरे लब मुस्कुराते भी हैं। फिर तो हम ऐसी बात क्यों करें कि जो मजाक का सबब बने मीडिया में या अवाम में, तो इससे बेहतर होता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, लोगों को वो बातें ना कहें जो आपको गलत अंदाज में पहुंचाई जा रही हैं जिसकी बुनियाद पे आप दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर। मिसाल के तौर पे शायद मुझे नहीं मालूम किस हद तक रेलेवेंट है कि जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज ये कहा कि पहले 8 महीनों में इस साल के हम कोई तकरीबन 32,000 ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर चुके हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा
193 बंदे मारे भी गए हमारे
जी उससे करते ना। साथ में उन्होंने ये कहा कि सिर्फ अगस्त के महीने में हमने 4,200 के करीब ऑपरेशंस किए। तो अब इसका अगर कोई भी समझदार बंदा होता तो इन्हें कहता कि आप इस किस्म के आजाद शुमार न दें, क्योंकि एक तरफ वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जिसका आज सदर ऑफिस आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि हम दहशतगर्दी की कमर तोड़ के रहेंगे उनका तिया पांचा कर देंगे, तो एक तरफ ये कहते हैं कि हमने एक महीने में 4,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, हम अमन लेके आए हैं और मुसल्ले अफवाज ने 48,000 किलोमीटर का मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है वो हमने दहशतगर्दों से पाक कर दिया है। तो आपको इसमें कोई कंट्रडिक्शन नजर आती है कि जब एक तरफ आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि दहशतगर्दी नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हमने सिर्फ एक महीने में 4000 प्लस ऑपरेशंस किए हैं, तो फिर लोग कॉमन सेंसिकल एक सवाल ये बनता है कि अगर हालात ऐसी हैं तो फिर आपको 4000 ऑपरेशंस करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है।
बहुत शुक्रिया। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने कल भी कॉल करके, वो बल्कि वो शामिल हो रहे थे, मैंने बीच में फोन लेने, क्योंकि वो मुझे कल उन्होंने मैसेज किया था कि टेक्स्ट करना नहीं सवाल बात करना बनता है, अभी भी उन्होंने कॉल किया, तो मैंने कहा आप मुझे क्विकली अपना कंसर्न बता दें, तो वो कहते हैं कि मैं खुद बात करना चाहता हूं, कोई कंसर्न अपने का इजहार, अगली बार आपकी परमिशन से मैं उनको भी जरूर ले लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इदारों को भी मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि हर आदमी या तो भत्ते के ऊपर है या उसका पैसा है। पाकिस्तान में कंटेनर्स की बात कर लें, कंटेनर वालों को भी पैसा मिलता है, जो कंटेनर लाते हैं वो भी उनको भी भत्ता मिल जाता है, पहले एक लेयर होती थी, अब ज्यादा पैसा बनता है, उन्होंने डबल और ट्रिपल लेयर लगाना शुरू कर दिए हैं, तो हर चीज ही भत्ते के ऊपर वहां तो चल रही है।
कम से कम 500 कंटेनर्स इन्होंने रोके हुए हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने लगाए हैं, और एक कंटेनर का जो किराया होता है वो कम से कम 40,000 रुपए रोज का है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए।
और 40,000 एक कंटेनर का किराया है, ये सिर्फ कंटेनर वाले को नहीं जाना, इसमें लाने वाले ले जाने वाले, यानी ये बहुत बड़ा माफिया है। मगर क्या बात है कि हमारे इदारों को, कि एक तरफ IMF के पास हम मजबूर और लाचार होते चले जा रहे हैं, एक और प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि ये समझते हैं कि लोग आर्मी को डिफेम कर रहे हैं, जिसमें शाम की आर्मी का जिक्र किया जाता है और मुख्तलिफ मुल्कों की आर्मी का जिक्र किया जाता है कि हम शायद आर्मी को डिफेम कर रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कहा है कि जनरल फैज हमीद के साथ कुछ और गिरफ्तारियां भी इसके पीछे उनका उन्होंने हिंट दिया है। मजा तो फिर है कि आर्मी के वो लोग जिनको पता था जनरल फैज, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ माई कंट्री, तो फैज हमीद जो करते थे, गो के वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को बट करते थे, बगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न्यू एग्जैक्टली वॉट ही वॉज डूइंग, तो वुड दे बी एबल टू होल्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ दैट टाइम, वुड दे बी एबल टू होल्ड हिम अकाउंटेबल फॉर?
देखिए, उनकी रिवायात नहीं है इस किस्म के एहतसाब करने की। आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी जब उनके खिलाफ मुकदमा हो गया था, तो उनको जबरदस्ती रावलपिंडी ले जाके वहां कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में फिर रख दिया गया था, उस वक्त तक जब तक सिंध हाई कोर्ट के जरिए उनको उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नहीं हटाया गया। जब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से उनका नाम सिंध हाई कोर्ट ने हटाया, वो भी जाहिर है मैनेज किया गया, उस वक्त जनरल राहिल शरीफ ने उसको मैनेज किया था, उसके बाद वो फिर मुल्क से चले गए थे। तो अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, हमें फिर अपने ही दोस्त ने फिर हमसे शिकायतें भी करते हैं, लेकिन जो उन्होंने आज DGISPR ने जनरल फैज हमीद के हवाले से बातचीत की है, वो अब लोगों ने ये भी सवाल उस पर उठाया कि वो तो 1.5 साल से अमलन नजरबंद थे, अगर नजरबंद थे तो इस दौरान वो किस हद तक PTI के साथ रابطے में थे, किस हद तक, वो तो बड़े ही कोई बेवकूफ होगा किसी भी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के एक सबका चीफ,
और जिसको इनसाइड आउट पता होगा
कि जिसको पता भी है कि उनकी निगरानी हो रही है, तो उसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसे काम किए बकौल जनरल अहमद शरीफ चौधरी के, और उस टॉप सिटी एक रेजिडेंशियल स्कीम है उसके हवाले से भी उनके खिलाफ शिकायतें आई, तो दो तीन शिकायतें मिला कि उनका भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। अब क्या अगर उनका ताल्लुक इमरान खान से ना बनाया जाता, ना बना होता माजी में या ना बताया जाता, तो क्या उस वक्त उस सूरत में भी उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी थी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। मेरा एक पर्सनल सा सवाल जो मुझे बहुत तंग करता है, मैं वो भी आपसे करना चाहती हूँ, कि हमारे वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, दिस ख्वाजा आसिफ ऑन द फ्लोर, असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को डिफेम किया था, और इन्होंने कहा था कि ये वो फौज है जिसने आज तक कोई एक जंग तो ये जीत नहीं सकी। आई विश कि मैं वो दिखा सकूं। क्या वजह है कि दे कुडंट फाइंड एनीबॉडी एल्स, द मैन जिसने पाकिस्तान की आर्मी को इतनी बड़ा फैक्ट उसके बारे में बता दिया और कोई आम जगह पे नहीं बताया, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे बताया कि ये वो फौज है जिसने आज तक कोई जंग नहीं जीती. क्या दे कुडंट फाइंड एनीबॉडी अदर देन हिम एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस?
नहीं, जब आप अगर एजेंडे पे मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं रहता. नवाज शरीफ साहब ने 2-3 दफा बड़ी बदाजू किस्म की तकरीरें की थी जनरल बाजवा के खिलाफ, जनरल फैज हमीद के खिलाफ. लेकिन आपने देखा कि उनकी बेटी माशाल्लाह इस वक्त वजीर आला हैं. तो तकरीरों पे सिर्फ वही लोग पकड़े जाएंगे जिनके साथ आपका ऑपरेशनल इख्तलाफ राय हो जाए. वो इख्तलाफ राय इस वक्त पीटीआई के साथ है. लिहाजा ख्वाजा आसिफ हों या हसन इकबाल हों या और इन जैसे और वजीर हैं, इस वक्त चूंकि वो मुकम्मल कोशिश में लगे हुए हैं मुक्तदर इदारों को खुश करने में, उसकी वजह से उन्होंने माजी में जो कुछ कहा वो फिलहाल फ्रीजर में डाला हुआ है इन्होंने. तो अब जब मुझे नहीं मालूम कि दोबारा कभी मौका आएगा तो इनके साथ क्या होगा, क्योंकि ये बार बार फौज के एहतसाब की बात करते रहे हैं कि उन्होंने एपीएस का भी जिक्र किया था किसी एक तकरीर में कि पिशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ उसका हिसाब कभी किसी ने मांगा. उन्होंने कारगिल की जंग की बात की थी, 1965 की जंग की बात की थी कि और कहा था कि इनका इन जो लोग उस वक्त इंचार्ज थे उनका एहतसाब होना चाहिए. लेकिन हमें इतना कोई आइडियल अंदाज में नहीं सोचना चाहिए. इस वक्त वो अच्छे मरासिम पे हैं, उनको इसीलिए वजीर दिफा बना दिया गया है. इस वक्त वो हर वो बात कर रहे हैं जो दूसरों को अच्छी लगती है. मसलन 9 मई की बात है, बार बार सबसे ज्यादा तवातुर के साथ ये बात कि 9 मई के मुजरिमों या 9 मई के जुर्म पे कौम से माफी मांगे बगैर इनको माफी नहीं मिलेगी. जी, तो ये बार बार जो सबसे ज्यादा तवातर के साथ बात आई है वो ख्वाजा आसिफ ने की है. और मेरा ख्याल है एक बच्चा भी समझता है, हमारा कुक है, हमारा ड्राइवर है, वो भी समझता है कि ये इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं.
बहुत शुक्रिया सर. ये जिनसे मैं बात करवानी इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन. द सेंटर इज जिसमें काम ये इम्तियाज गुल साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज. और जब मैं इसका प्रोफाइल आप प्लीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एडवोकेसी आउटफिट फोकस प्राइमरली ऑन द सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटीज के हवाले से रेडिकलाइजेशन, दहशतगर्दी, ये जो इंतहा पसंद ग्रुप्स बन जाते हैं, गवर्नेंस, फिर इन चीजों को संभालना कैसे है, चीज मुल्क को चलाना कैसे है, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंटरनेशनल एंड द नेशनल प्रिंट मीडिया. आपके जो आर्टिकल्स हैं न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी शाया किए जाते हैं, फॉरेन पॉलिसीज के लिहाज से यूएसए में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, फ्राइडे टाइम्स में, इस्लामाबाद डेली एक्सप्रेस, ट्रिब्यून में.
अभी ताजा तरीन एक मैंने आर्टिकल, मेरा एक पेपर है रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के एक मैगजीन में छपा है
जी.
अब मैंने कहा वो भी बता दूं आपको.
सर आप वो मुझे भेजिएगा जरूर प्लीज, अगर हो सके तो मुझे, अगर आप रशियन मैगजीन में जो
आप रिसेंट के साथ शेयर कर
प्लीज मेरे साथ वो लिंक शेयर करने
आए. अफगानिस्तान के हवाले से है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान आए तो पाकिस्तान को कैसा वो शॉक लगा, उसका टाइटल यही कि
क्योंकि कल मोहसिन नकवी पाकिस्तान, जब आप ये बात कर रहे हैं ना तो मोहसिन नकवी साहब ने बार बार कहा कि ये वही लोग हैं दहशतगर्द जिनके साथ रियायत बरती गई थी, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में मेरा ख्याल है तालिबान जो थे कुछ उनके साथ वादे वईद हुए थे, तो इनडायरेक्टली ही वॉज ब्लेमिंग के उन लोगों को आने दिया वो लोग पाकिस्तान के.
पीटीआई का काम नहीं था ये इस किस्म के सारे कामों की जिम्मेदारी हमारी मुसल्ह अफवाज की होती है, 10 कोर उसकी जिम्मेदार होती है. और ये सारा जनरल फैज हमीद ने बतौर कोर कमांडर पिशावर ये सारा काम किया था. ऐवान सदर उस वक्त के जो सदर थे उनसे बराह रास्त अप्रूवल्स मंजूरी ले ली थी कि हम ये कुछ लोगों को वापस लेके आ रहे हैं, तो रिटर्न मुआहदा कोई नहीं हुआ था. लेकिन वो सारा मलबा जो है वो पीटीआई पे डाल दिया गया है. और अब ये बार बार ये सारे लोग, आखिर मेरा ख्याल बात करूंगा इस पे फिर खत्म करते हैं, ये बार बार ये 9 मई के इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ा सही कहा ये 2 दिन पहले सहाफियों से बातचीत में कि दरअसल 9 मई इन तमाम جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کی انشورنس پالیسی ہے. تو صاحب آگے آپ خود سمجھتی ہیں کیوں یہ کہہ رہے ہیں.
بہت شکریہ جناب امتیاز گل صاحب, آپ کا انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو آپ سے پھر بات ہوگی, تب تک ہمارا آپ کا اللہ حافظ. صاحب مقصد یہ کہ جس شخص سے میں نے آپ کی بات کرائی ریسورسفل پرسنالٹی ہیں, اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان پروگرامز کو سنیے, دیکھیے, اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا ان شاء اللہ. چند اسپانسرز ول کم بیک. آئی تھینک آر اسپانسرز جن کے توسط سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM ینگس ٹاؤن ٹورانٹو.
770 AM دیا نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900.
پاکستان پیسے بھیجنا اب ہوا آسان. یوز لیمفائی فار انٹرنیشنل ٹرانسفرز. کینیڈا سے پاکستان پیسے منٹوں میں پہنچتے ہیں براہ راست, جس کو آپ بھیجنا چاہیں. بہترین ایکسچینج ریٹ اور پیسے پہنچے منٹوں میں. ڈاؤن لوڈ فرام گوگل پلے اور ایپل اسٹور. کوڈ پاکستان استعمال کرنے پہ آپ کو ملے $10 کا کیش بیک. اپنے فون سے براہ راست بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا شروع کریں منٹوں میں اور بنا کسی فیس کے. لیمفائی.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 کینیڈی روڈ, برامٹن, 9058747471.
Pakistani Veterans Canada presents Pakistan Veterans Day, musical night with Shabnam Majeed and Joji Ali Khan. Come and enjoy this event with full of live musical performances, delicious food with appetizers, great networking opportunities with a group of professionals. Saturday, 7th September, 6 p.m., Capital Banquet Center, 6435 Dixie Road, Mississauga. For tickets, 416-829-0908.
10 din ho gaye tenu sneha laaye nu, par tu ignore hi kar reha hun. Phone ignore ho juga, goliyan ignore nahi honiyan. Aap da te aap de parivar da dhyan rakhi, pher na kahi bhi dassya nahi.
Justin Trudeau di soft on crime policies di wajah naal extortion rise te hai. Liberals ne extortion te penalties vi kata dittiyan han. Is dauran Pierre Poilievre extortion de against bill leke aaye san, ate Justin Trudeau te Jagmeet Singh ne is de khilaf vote kiti. Hun sirf common sense conservatives hi Canada da mahol theek kar sakde ne. Brought to you by Pierre Poilievre and Canada's conservatives.
ٹیم فور انٹرٹینمنٹ اتے ٹراس 99 لوجسٹکس پیش کر دینے پنجابی ورسہ 2024 ٹورانٹو شو سیٹرڈے 7 ستمبر نو دا تھیٹر ایٹ گریٹ کینیڈین کسینو ریزورٹ ٹورانٹو वुडवाइन मॉल ते वुडवाइन रेस ट्रैक ते बिल्कुल नाल मनमोहन वारिस कमल हीर अते संतार टिकटा लई टिकट मास्टर .ca ते जाओ. वधेरे जानकारी लई कॉल करो टीम फॉर एंटरटेनमेंट 905-793-1234.
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है.
मेरी सेविंग $350.
मेरी सेविंग सिर्फ $100.
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है. मैंने सेव किए हैं $1,775.
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना.
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है. और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने. आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं. टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773.
साडे कोल योजना है जो कि ओंटारियो नु जोड़ रही है. रोजाना आवाजाही नु घटाउण लई नवीआं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार. एह सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको. ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो. इस दी अदायगी ओंटारियो सरकार वल्लों कीती गई है.
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن. آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے. ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک, ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو, نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ون اسٹاپ شاپ. اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی. کوئک ٹرک لیو 519-622-0660, quicktruckcube.com.
کاش پیسے گھر بھیجنا آسان اور سویدھا جنک ہوتا. سی آئی بی سی گلوبل منی ٹرانسفر کے ذریعے آپ کے پریوجن اسی دن کیش پک اپ سروس کے ساتھ لوکل منی گرام ایجنٹ سے کیش اٹھا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کیش اسی دن لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ دن اور یہ دن. اگر آپ خوشیاں مارنے جا رہے ہیں تو $0 سی آئی بی سی ٹرانسفر فی کے ساتھ کیش پک اپ سروس کے ذریعے بھیجیں. cibc.com/cashpickup پر جائیں. شرطیں اور سی آئی بی سی فورن ایکسچینج ریٹس لاگو. سی آئی بی سی, ایمبیشنز میڈ ریئل.
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ. ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241,
647-769-0241. تیسرا پروگرام میں ایک دفعہ سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ جناب پردیپ جی اس وقت یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. پردیپ جی سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی. کینیڈا میں رہتے ہوئے بلکہ اپنی زندگی میں اسٹیٹ پلاننگ, لائف انشورنس, کریٹیکل انشورنس, ڈسیبلٹی بہت ضروری ہے. آپ کی اپنی زندگی میں بھی آپ نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہوگا, ایک کینسر ہوا, دوسرا کینسر ہو گیا. انسان جیتا بھی رہتا ہے مگر اپنے سامنے بجلی کا بل, پانی کا بل آتے ہوئے دیکھتا ہے, مگر پیسے کی تنگی ادارہ اتنا سفیشنٹ کیش ہمارے اکاؤنٹس میں ہر وقت تو نہیں ہوا کرتا ہوتا. انشورنس کو جب بنایا گیا تھا تو اسی صورتحال پہ بنایا گیا تھا کہ ان دا بیڈ ٹائم اف اٹ کمز اٹس اے رسک شیئرنگ, کہ خدا نخواستہ میری زندگی میں اگر میں, میرے پہ لائبلٹیز ہیں, ریسپانسبلٹیز ہیں, بچے کی تعلیم ہے, گھر پہ آف ہونا ہے, خدا نہ کرے کہ میری موت کے بعد میری فیملی جو ہے وہ کسی تنگی کا شکار ہو, تو اس تمام چیزوں کے لیے لائف, ڈسیبلٹی, کریٹیکل انس, بعض اوقات بچوں نے مصروف ہو جانا ہے, ہو سکتا ہے مجھے اولڈ ایج میں کسی خاص پلان کی ضرورت ہو تاکہ میں کسی ایسی جگہ پہ جا کے رہ سکوں جہاں پہ میری ضروریات زندگی پوری ہو سکیں, مجھے کوئی کیئر کر سکے. تو اس پلاننگ کے لیے دیر آر سو مینی کمپنی. سن لائف کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اٹ از اے ورلڈ رینؤنڈ کمپنی, وی آر پراؤڈ اٹس اے کینیڈین کمپنی. اور پردیپ جی نے کبھی بھی اپنا پلیٹ فارم چینج نہیں کیا سنس ایور ہی جوائنڈ, ہی کیم ٹو کینیڈا, ہی جوائنڈ سن لائف. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے اتنی زندگی کے تجربے میں, زندگی کسی کے بھی اختیار میں نہیں, بہت سے لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئی جن کی فیملیوں نے ان سے رابطہ کیا, بعض اوقات پیپر جو کلیم کے اکاؤنٹ کے پیپرز جو فل اپ کرنا, اس میں ہیلپ کرنا, بینیفٹ لے کے دینا, اس میں بھی آپ نے مدد کیا. یعنی پلان صرف بیچنا ہی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت تندرستی عطا فرمائے کہ رسک کے موقع کے اوپر ان بینیفٹس کو فیملی تک لے کر کے آنے میں بھی پردیپ جی آپ کے مددگار اور معاون. میں پردیپ جی کو ویلکم کرتی ہوں. سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام عارفہ جی, اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایک ہی کمپنی میں نے اپنی مین کمپنی بنا کے کام کیا, حالانکہ بہت ساری اور کمپنیوں سے ڈیل کیا اپنے کلائنٹس کی ہیلپ کرنے کے لیے. سن لائف بہت بڑی کمپنی ہے, 1865 سے کام کر رہی ہے, لیکن اس کی جو فائنینشیل اسٹرینتھ ہے ویل اوور ٹریلین $, بہت طرح کے بہت بڑھیا پلانس ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ سپرب کسٹمر سروس. ہر کلائنٹ کے پاس ایک ایڈوائزر کو دیا گیا ہے جو کہ سب کام کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کے پلانس اس کو دینا، اس کو پلانس کو مانیٹر کرنا، پلانس میں تبدیلیاں کرنا، اور ضرورت آنے پہ کلیم بنانا، اور ان سب چیزوں کی کوئی فیس نہیں ہوتی اس کے بعد. اور اگر ایڈوائزر خود اس کی ڈیتھ ہو جائے یا ریٹائر ہو جائے تو کمپنی نیا ایڈوائزر دیتی ہے. تو سپر کسٹمر سروس اینڈ ویری اسموتھ کلیم ٹائم، یہ اس کی اسٹرینتھ کے بہت بڑے حصے. اور یہی دیکھ کے میں بھی کمپنی میں 25 سال سے اوپر ایک ہی کمپنی کو پکڑے ہوئے ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کلائنٹس کی دیکھ بھال کے لیے اس سے بہتر کمپنی نہیں ہے پورے نارتھ امریکہ میں.
سن لائف کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، سر آپ اپنا نمبر دیجیے.
416-894-5872 عارفہ جی،
894-5872 اسکرین پہ آپ کو لکھا ہوا بھی نمبر نظر آ رہا ہے. پردیپ جی، ماجد بھائی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
میں پوچھوں گا ان سے، پر سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں پردیپ جی کو. اور ابھی تھرسڈے چینج ڈیٹ یا ان کا ڈیٹ چینج نہیں ہوا ہے تھرسڈے کا، مگر ابھی بھی یہ ٹیوزڈے کو ہی آیا کریں گے آپ کے ساتھ. بس بادشاہ ہیں، انڈا دیں یا بچہ دیں ان کی مرضی ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ مجھے تھرسڈے کا چانس دے دیں، تھرسڈے کو ہی آ گئے. پردیپ جی جیسے انہوں نے بتایا اپنا پورا انٹروڈکشن، اور اب میں پردیپ جی کو ویلکم کرتا ہوں. پردیپ جی اب بتائیے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے؟
آج ماجد بھائی ہم لوگ بات چیت کریں گے پرماننٹ انشورنس پلانس جن میں گارنٹیز اور ڈویڈنڈز دونوں ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ہمارے کلائنٹس کے لیے بینیفیشل ہیں، کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، اور کلائنٹس کس طرح سے ان کا بیسٹ ایڈوانٹیج لے سکتے.
تو چلیے شروع کرتے ہیں. اب میں سب سے اچھی طرح جو سمجھا سکتے ہیں وہ پردیپ جی ہیں. ٹرمز گارنٹیز اینڈ ڈویڈنس، کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ سر
ماجد بھائی گارنٹیز کا مطلب ہے کہ ان پلانس میں دو حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ تو ہوتا ہے اس کا گارنٹیز کا، یعنی کہ آپ نے پلان لیا، اتنے لاکھ کا پلان آپ کا ہے، اتنے اماؤنٹ کا پیمنٹ کریں گے ہر مہینے، اور کمپنی آپ کو گارنٹی دیتی ہے کہ آپ کا پلان 10 سال میں 20 سال میں پیڈ اپ ہو جائے گا یا لائف ٹائم سیم پریمیم رہے گا، اور اس کا ڈیتھ بینیفٹ بھی کبھی چینج نہیں ہوگا. تو یہ تو گارنٹیڈ پورشن ہے، یعنی کہ پتھر کی لکیر کی طرح کمپنی نے لکھ کے دے دیا اتنا آپ پریمیم دیں گے، اتنے کا کوریج ہے، اور اس طرح سے آپ کا پلان چلے گا. تو دس از پارٹ آف گارنٹیز ماجد بھائی. اور ڈویڈنڈز کیا ہے؟ آن ٹاپ آف گارنٹیز سن لائف ڈویڈنڈز دیتی ہے اس طرح کے پلانس میں، جو کہ پچھلے 30 سالوں میں 6% سے 10% کے درمیان رہے ہیں. ہر سال ڈویڈنڈ دیا ہے آن ٹاپ آف گارنٹیز، تو اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ان پلانس کو کئی بار پارٹیسپیٹنگ لائف پلان بھی کہا جاتا ہے. پارٹیسپیشن کا مطلب ہے پارٹیسپیشن ان پروفٹس، اور پروفٹ کو کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہم لوگ؟ ڈویڈنڈ سے. ڈویڈنڈ یعنی کہ سن لائف ایک طرح سے بونسز پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ 6% سے 10% کے بیچ میں پچھلے 30 سال میں رہے. تو اس کا اس سے ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ جو پیسے آتے ہیں یہ ٹیکس شیلٹرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ لائف انشورنس پلان کے تحت ہیں یہ. اور اس سے جو تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، اس میں ٹیکس نہیں لگتا جب پلان گرو کر رہا ہوتا ہے، اور بہت طرح کے اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں جو اب آگے چل کے لوگوں کو بتائیں گے.
416-894-5872 جناب پردیپ جی کا فون نمبر ہے. پردیپ جی، جس طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں جو کیش ویلیوز بیکاز آف دا ڈویڈنڈز اتنا انکریز ہوا تھا ویری فاسٹ، سو ہاؤ ڈز اٹ بینیفٹ ٹو کلائنٹس؟
کیا ہوتا ہے مجید بھائی، کچھ تو کیش ویلیوز جو ہیں وہ گارنٹیڈ رہتی ہے کمپنی نے جو لکھا ہے پورشن، کہ آپ اگر اتنے پیسے دیں گے، اتنے سال آپ کو دینے، اتنا آپ کا ڈیتھ بینیفٹ ہے، اور اس طرح سے آپ کے پلان کی ویلیوز بڑھیں گی. دیٹ از گارنٹیڈ پورشن. لیکن جو ڈویڈنڈ کا پورشن ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 سے لے کے 10% دیا ہے پچھلے 30 سالوں میں، تو وہ جب ایکسٹرا آتا ہے پیسہ اس کا ڈویڈنڈ کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل کیش ویلیو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو पैसा निकाला नहीं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे प्लान ग्रो करता रहे, तो वो जो डिविडेंड का पैसा आता है उसको भी अगर डेथ हो जाने पे उसको एडिशनल डेथ बेनिफिट में तब्दील कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इस फिनोमिना से हमारे प्लान में कैश वैल्यू और डेथ बेनिफिट दोनों में मुसलसल हर साल इजाफा होता ही चला जाता है ऑल अलोंग। तो इससे फायदा यह है कि क्लाइंट ने जो कैश वैल्यूज थी उसकी वो बढ़ रही हैं, और कल को उसकी डेथ होती तो उसके फैमिली के लिए भी पैसे बढ़ रहे हैं, और चूंकि कैश वैल्यूज बढ़ रही हैं इसमें ये बेनिफिट आ जाता है कि कई बार जरूरत पड़े तो आदमी उसमें से कैश ड्रॉ कर सकता है और पॉलिसी फिर भी चलती रह सकती है, यानी कि जरूरत पड़ने पे लाइफ टाइम में क्लाइंट अपने पैसे निकाल सकता है एंड पॉलिसी कैन स्टिल कंटिन्यू। तो ये अनबिलीवेबली स्ट्रांग फीचर है माजिद भाई, और इसीलिए प्लान जो है दे आर कंसीडर्ड टॉप ऑफ द लाइन प्लान।
अगले सवाल का जवाब तो आपने मुझे वैसे ही दे दिया कि मैं पूछने वाला था आपसे कि अगर ये पॉसिबल है कि आप विदड्रॉ कर सकें उसमें से कैश आउट में से।
बिल्कुल माजिद भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब भी विदड्रॉ करना चाहे एक बार अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कशन कर लें, प्लान देते समय समझ लें कि किस लिमिट तक आप विदड्रॉ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक हो, और आप जब निकाल रहे हैं पैसे तो आपको पता होना चाहिए कि उससे पैसे निकालने से आपकी पॉलिसी में कैश वैल्यू तो खैर जरूर उस पर असर आएगा क्योंकि आपने पैसे निकाल लिए, लेकिन आप पॉलिसी को बरकरार रख सकते हैं, और आपकी पॉलिसी में चूंकि डिविडेंड्स हर साल आते रहेंगे इसलिए फिर से इजाफा होना शुरू हो जाता है।
416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है, इसमें भी किस डिफरेंट डिफरेंट किस्म के राइडर्स आप लगा सकते हैं?
बहुत तरह के राइडर्स लगा सकते हैं माजिद भाई इसमें, क्योंकि ये प्लान टॉप ऑफ द लाइन प्लान है, इसकी कॉस्ट उसी हिसाब से है क्योंकि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, और इसमें हम राइडर लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास परमानेंट प्लान लेने की हमारे पास लिमिटेड बजट है तो हम इसमें एडिशनल कवरेज लगा सकते हैं एज बेसिक प्लान ऑफ टर्म प्लान, वो इसमें ऐड कर सकते हैं एज अटैचमेंट, इसमें हम ऐड कर सकते हैं डेथ बेनिफिट राइडर, इसमें हम ऐड कर सकते हैं टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, इसमें हम कर सकते हैं अगर हम बच्चों का कवरेज ले रहे हैं तो पेरेंट्स के ऊपर राइडर, ताकि अगर बच्चे के ऊपर हम प्लान ले रहे हैं और पेरेंट का इंतकाल हो गया तो उस पॉलिसी का पैसे कौन देगा। तो बहुत तरह के राइडर्स लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब वन ऑन वन मीटिंग होती तभी हम लोग बता सकेंगे कि आपकी सिचुएशन, आपके बजट और आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्या राइडर्स बेस्ट रहेंगे, क्योंकि हर चीज हर एक के लिए सूटेबल साबित नहीं होती माजिद भाई, और बजट में भी नहीं होती।
416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी एज तो कोई सबसे बेस्ट तो एज सबसे बेस्ट एज है, मगर इस पर्टिकुलर ये जो प्लान है इसको लेने के लिए बेस्ट एज कौन सी होती है?
बेस्ट एज तो सारी होती है, लेकिन बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इसमें चुस्ती के साथ एक्शन लेती हैं, अपने दो दो दिन चार चार दिन के बच्चों के लिए प्लान ले लेती हैं, जिनके लिए सनलाइफ को एक कानून बनाना पड़ा कि 15 दिन से छोटे बच्चे का हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज हैं जो दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स पे पैसे पे कंट्रोल करती हैं, उन्होंने पिछले 200 सालों में इन प्लान्स की बहुत ज्यादा एडवांटेज लिए हैं, और जो दूसरी हमारी कम्युनिटीज हैं जो कि हम दूसरों को देख देख के जलते हैं, गालियां देते हैं, रोते धोते हैं, हम लोगों ने इसका बेस्ट एडवांटेज नहीं लिया है। तो जितनी कम एज में लिया जाए प्लान वो अच्छा है, उतना सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर हमारी एज बढ़ भी गई तो हम ये भी कर सकते हैं कि जितना ले सकते हैं हम उतना लें, ताकि उस एडवांटेज को भी हम हाथ से जाने ना दें, उसका हम बेस्ट बेनिफिट उठाएं और अपनी आगे अपनी जनरेशन में पास करें।
आखिर में क्या बताना चाहेंगे आप?
मैं यही कहना चाहूंगा माजिद भाई, मेरा नंबर है 416-894-5872, 416-894-5872, मुझे कॉल करें, अपना कुछ वक्त दें और उसके एवज में آپ کو اتنی امپورٹنٹ معلومات ملیں گی جو کہ آپ کے لیے بہت لانگ ٹرم بینیفٹ کا کام کریں گی، چاہے آپ کچھ ایکشن لیں یا نہ لیں، لیکن آپ کچھ منٹ ضرور دیں، فون پہ فون کریں مجھے، اور ملنے کا اگر آپ ٹائم بنا سک نکال سکتے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ، میرے آفس آ سکتے ہیں آپ، زوم پہ بھی مل سکتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پہ میں آپ سے ملنے آپ کی جگہ بھی آ سکتا ہوں.
بے انتہا شکریہ سر آپ کا، اور اگلے ٹیوزڈے کو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کی فرمائش کا اگلا گیت جناب ہمیں سے بھی پردیپ جی ادھر آتے ہیں تو ان کی ایک فرمائش ہوتی ہے، اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب یہ فرمائش میری ہے.
تھینک یو ویری مچ.
آج کی فرمائش دیکھتے کیا ہے، بہت ہی خوبصورت گیت ہے. سباب
تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ٹیوزڈے پھر ملاقات ہوتی ہے ماجد بھائی. خدا حافظ.
نیلے گگن کے تلے دھرتی کا پیار پلے، نیلے گگن کے تلے دھرتی کا پیار پلے. ایسے ہی جگ میں آتی ہیں صبحیں، ایسے ہی شام ڈھلے، نیلے گگن کے تلے دھرتی کا پیار پلے. شبنم کے موتی پھولوں پہ بکھرے، دونوں کی آنکھ پھلے، نیلے گگن کے تلے دھرتی کا پیار پلے. بلکھاتی بیلے مستی میں کھیلے، پیڑوں سے مل کے گلے، نیلے گگن کے تلے دھرتی کا پیار پلے. ندیا کا پانی دریا سے مل کے ساگر کی اور چلے، نیلے گگن کے تلے دھرتی کا پیار پلے. ایسے ہی جگ میں آتی ہے صبحیں، ایسے ہی شام ڈھلے، نیلے گگن کے تلے دھرتی کا پیار پلے.
Call 905-450-2828 905-450-2828 905-450-2828
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा, 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट विल बी ऑन ए चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ। 416-894-5872।
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है, 786 मूविंग प्लस।
अच्छा, वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए, 416-786-6000, 416-786-6000।
टैलेस फूडो स्टोर अब खुल गया है आपके नेबरहुड में, रिजवे प्लाजा में। स्टूडेंट फोन के ऊपर अमेजिंग डील्स लीजिए और होम इंटरनेट प्लान्स भी। कूडो का 50 GB सिर्फ $39 में और टैलेस का 100 GB सिर्फ $50 में। दे आर लोकेटेड एट रिजवे प्लाजा एट 3470 प्लेटिनम ड्राइव, यूनिट 42, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 905-800-1615, दैट इज 905-800-1615।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वेरायटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट, 9052323663। विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो, 905-607-5000, 905-607-5000।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको ये मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज, 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ, 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, 416-792-8792।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड, मिसिसागा।
जी साहब नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड 4:53 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और थर्सडे का दिन है, सितंबर की 5 तारीख और 24 डिग्री टेम्परेचर हमारे मोहल्ले में इस वक्त। सब अगर आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी हो गई हो या सुनने में कमी हो रही हो तो आप एक दफा हेयर मैक्स जनाब शिराज साहब से कांटेक्ट करें और साजो आवाज का हवाला देने पर आपको आपका जो हेयरिंग टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। तो हेयर मैक्स के शिराज साहब का फोन नंबर, बाय द वे दो लोकेशन से सर्व करते हैं, एक टोरंटो में एक मिसिसागा में, 4167928792 बड़ा आसान नंबर है, 4167928792 और इन्हीं को कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट बना लें। इसके साथ साथ फजल वदूद साहब का भी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक है, इंश्योर प्रो से के साथ मुंसलिक है, 9056075000 इनका फोन नंबर है। आप डॉक्टर पद्माजा रानी डेंटिस्ट हैं हमारी और आपकी, 3410 शेपर्ड एवेन्यू ई शेपर्ड एंड राइट इन द कॉर्नर ऑफ शेपर्ड एंड वार्डन पे इनका क्लिनिक है। तो दांतों का कोई भी काम हो आपका, आपके बीवी बच्चों का, ईस्टर्न में आप हैं तो डेंटिस्ट डॉक्टर पद्माजा, उनका फोन नंबर है 4162997468 इनका फोन नंबर, नॉट 6666 इनका फोन नंबर है। और सब उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब तशरीफ ला रहे हैं टोरंटो में और लाइव प्रोग्राम होगा इनका 14 सितंबर को, सैटरडे का दिन है, 14 सितंबर को ये प्रोग्राम होने जा रहा है और इसकी टिकट्स के लिए आप टिकट सिर्फ टिकट मास्टर पे है तो आप ticketmaster.ca पे जाके इनकी टिकट्स बुक करवा सकते हैं और वहां पर आप नजर भी आएगा आपको कहां पर है ये, क्या किस कहां बैठ रहे हैं आप, कितना ऊपर है कितना नीचे है। बाय द वे ये जो ये थिएटर जो है जहां पर ये परफॉर्म करेंगे, ये इट इज लाइक अ थिएटर, जैसे आप बेसबॉल गेम देखने के लिए आप जब हमारे स्टेडियम में जाते हैं तो ये स्टेडियम अभी जो हमारा रॉजर्स का स्टेडियम है वो भी ऐसा बना है जैसे कि अगर आप एकदम ऊपर की सीटों पर बैठे ना तो पूरी की पूरी आपको जो गेम है एकदम सामने नजर आती है, उसका तरीकाकार का आर्किटेक्ट ही ऐसा बनाया है। और नॉर्मली थिएटर्स जो होते हैं, जो एक्चुअल थिएटर्स होते हैं, उन थिएटर्स का भी यही होता है कि वो उसकी सीटिंग ऐसी होती है कि आपको आर्टिस्ट जो है सामने नजर आएगा और ऑफकोर्स उसका साउंड सिस्टम तो एक्सीलेंट है। तो सैटरडे 14 सितंबर को जनाब राहत फतेह अली खान साहब परफॉर्म करेंगे, टिकट मास्टर से आप टिकट हासिल कर सकते हैं। आइए साहब उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में एक खूबसूरत गीत समाप्त फरमाइए, कल योग से ये गीत है समाप्त।
तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। सब से है दिल में मेरे अरमां कई रंग है, सब से है दिल में मेरे अरमां कई रंग है, इनको तू सुन ले आजा चाँद के रंग चढ़ा जा, इनको तू सुन ले आजा चाँद के रंग चढ़ा जा, कहना कभी तो मेरा मान। हाय जिया धड़क धड़क।
धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए।